بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 15، صحابہ اور لشکر اسامہ، پیج نمبر 119 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا اجمالی قصہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے صرف 2 دن پہلے روم سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سردار اسامہ بن زید بن حارثہ کو بنایا۔ اسامہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور اسامہ کی ماتحتی میں بڑے بڑے انصار اور مہاجرین کو قرار دیا، جیسے ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس پر لوگوں کو اعتراض ہونا چاہیے تھا اور کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہمارے اوپر ایسے نوجوان کو کیوں کر سردار بنایا جا سکتا ہے جس کے چہرے پر ابھی داڑھی بھی نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس سے پہلے اسامہ کے باپ زید کی سرداری پر اعتراض کیا تھا۔ اسامہ کے بارے میں ان لوگوں نے ضرورت سے زیادہ نقد و تبصرہ کیا تھا، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آ گیا تھا اور آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر اس طرح نکلے تھے کہ آپ کے قدم زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ بیماری کی وجہ سے آپ بہت خستہ تھے، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر گئے، حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، ایہا الناس، یہ کیا بات ہے جو اسامہ کی سرداری کے بارے میں میں سن رہا ہوں؟ اگر تم میری اس بات پر اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے اسامہ کو کیوں لشکر کا سردار بنایا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم اس سے پہلے میرے اوپر زید کو سردار بنانے میں اعتراض کر چکے ہو۔ خدا کی قسم، زید سرداری کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی اس کے بعد سرداری و امارت کا لائق و سزاوار ہے۔ طبقاتی ابن سعد، جلد 2، صفحہ 190، تاریخ ابن السیرج، صفحہ 317، جلد 2، السیرۃ الحلبیہ، جلد 3، صفحہ 20، تبری، جلد 3، صفحہ 226۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جلدی کوچ کرنے کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی فرماتے، جہزو جیشا اسامہ، اسامہ کے لشکر کو تیار کرو اور جاؤ۔ کبھی فرماتے، اسامہ کے لشکر کو جلدی روانہ کرو۔ کبھی فرماتے، اسامہ کے ساتھ لوگوں کو جلدی بھیجو۔ ان جملوں کی بار بار تکرار کرتے رہے، لیکن ہر مرتبہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے اور مدینہ کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈال دیا، مگر یہ لوگ جانے والے نہیں تھے۔ اس قسم کی بات مجھے یہ پوچھنے پر مجبور کرتی ہے، آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی جسارت کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اس کے حق میں کیسی نافرمانی؟ میں تو کیا کوئی بھی آدمی اس سرکشی و جرت کی معقول تعویل نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے واقعات جن سے عظمت صحابہ مجروح ہوتی ہے، پڑھ کر میں حسب عادت ان کو جھٹلانے یا ان سے تجاہل کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جن واقعات پر شیعہ سنی مورخین و محدثین اجماع کر چکے ہوں، ان کو جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا۔ میں نے خدا کے حضور میں عہد کیا ہے کہ انصاف سے کام لوں گا، اپنے مذہب کے لیے تعصب نہ برتوں گا اور ناحق اس کے لیے کسی وزن کا قائل نہیں ہوں گا۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، یہاں پر حق تلخ ہے، اور ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، حق بات کہو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور حق بات کہو چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس واقعے میں حق بات یہ ہے کہ جن صحابہ نے بھی اسامہ کو سردار بنائے جانے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے حکم الہی کی مخالفت کے ساتھ ان صریح نصوص کی مخالفت کی ہے جو ناقابل شک ہیں، ناقابل تاویل، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی عذر پیش کیا جا سکتا ہے، سوائے اس عذر بارو کے جو کرامت صحابہ اور سلف صالح کے نام پر بعض حضرات نے پیش کیا ہے، لیکن کوئی بھی عاقل و آزاد اس قسم کے اعذار کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن کو حدیث فہمی کا شعور نہ ہو یا عقل سے پیدل ہوں، या मजहबी तासुब ने इनको इस हद तक अंधा बना दिया हो कि जो वाजिबुल अतात फ़र्ज है और वाजिबुल तर्क नहीं में फ़र्क ना कर सकते हों, इनकी बात अलग है। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई माकूल उज़्र इन सहाबा के लिए तलाश कर सकूं, लेकिन मेरी अकल में कोई ऐसी बात नहीं आई। अलबत्ता अहले सुन्नत ने इन असहाब के लिए ये उज़्र तलाश किया है। वो लोग मशाइख़े कुरैश और बुज़ुर्गाने कुरैश में से थे, साबिक़ुल इस्लाम थे और उसामा एक अलहड़ जवान थे। इज़्ज़त इस्लाम की फ़ैसला कुन जंगों में से किसी जंग में शरीक नहीं हुए थे, जैसे बदर, ओहद, हुनैन वगैरह, और ना ही किसी किस्म की साबकियत थी, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लश्कर का सरदार बनाया था। तो ये बहुत ही कमसिन थे, और इंसानी तबीयत का खासा है कि जब बूढ़े बुज़ुर्ग हजरात मौजूद हों तो लोग जवानों की अतात पर तैयार नहीं होते। इसीलिए असहाब ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया था, ताकि उसामा की जगह पर किसी बुज़ुर्ग सहाबी को सरदारी मरहमत फरमा दें। लेकिन इस उज़्र का मदरक ना कोई दलीली अकल है और ना शरई, और ना कोई वो मुसलमान इस बात को मान सकता है जिसने कुरान पढ़ा हो और इसके अहकाम को समझा हो, क्योंकि कुरान का ऐलान है, तर्जुमा, रसूल जो हुक्म दें इसको मान लो और जिससे रोक दें इससे रुक जाओ, सूरह अल-हशर आयत 7। दूसरी जगह इरशाद है, तर्जुमा, ना किसी मोमिन और ना किसी मोमना को ये हक है कि जब खुदा और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म दें तो इनको अपने इस काम के करने ना करने का इख्तियार हो। और याद रहे कि जिस शख्स ने खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, वो यकीनन खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तिला हो चुका है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। इन नसूसे सरीहा के बाद भला कौन सा उज़र बाकी है जिसको अक्लन कबूल कर सकें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूँ जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़बनाक किया और माबूद तू नहीं फरमाया है और तेरा कौल हक है। तर्जुमा, जब हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करे और तुम्हें किताब और अक़ल की बातें सिखाए और तुमको वो बातें बताए जिनकी तुम्हें पहले से ख़बर भी ना थी, सूरह बकरा आयत नंबर 151। कितना ताज्जुब है इन लोगों पर जो अपने को ऊंचा समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी तो हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतदाल नहीं करते, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज़्यान का इत्तेहाम लगाते हैं और बहुत ही बेशर्मी और बेअदबी के साथ इनकी मौजूदगी में लड़ते झगड़ते हैं, शोरगुल करते हैं, और कभी ज़ैद बिन हारिसा की सरदारी पर एतराज़ करते हैं तो कभी उसामा बिन ज़ैद की सरदारी पर लान तान करते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए किसी भी जो याए हकीकत के लिए फ़ैसला कर लेना बहुत आसान है कि हक शियों के साथ है। जब वो लोग अलामाते इस्तफहाम लगा लगा कर असहाब के करतूतों के बारे में एक एक करके सवाल करते हैं और इनके एहतराम पर नाक भौं चढ़ाते हैं और वो अपनी मोहब्बत व मवद्दत को सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस करते हैं तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते। मैंने तो इख्तिसार के लिए सिर्फ 4 या 5 मकामात मुखालफत के दिखाए हैं और महज बउनवान मिसाल, लेकिन उलमाए शिया ने इन तमाम मकामात का अहासा किया है जहाँ पर सहाबा ने मखसूसे सरीहा की मुखालफत की। और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पेश किया है जिसको उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी साओ मसानीद में दर्ज किया है। ख़ुद मैं जब बाज़ वाक़यात का मुताला करता हूँ कि बाज़ असहाब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रवैया इख्तियार किया था तो मुतहय्यर व मदहोश हो जाता हूँ। सिर्फ इन असहाब की जसारत व बदतमीज़ी पर ही नहीं बल्कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के इस रवैये पर और ज़्यादा ताज्जुब करता हूँ जिन्होंने हमेशा आवाम को इस धोखे में रखा कि असहाब बराबर हक पर साबित कदम रहे थे। इनके बारे में किसी भी किस्म का नकदो तबसरा हराम व गुनाह है। इन लोगों ने अपने इस इकदाम की वजह से तालिब हक को कभी हकीकत तक पहुँचने ही नहीं दिया। वो हमेशा फिक्री तनाक़ुज़ात के भंवर में चक्कर खाता रहा। मैं गुज़िश्ता वाक़यात के अलावा बाज़ और मिसालें पेश करता हूँ जिससे सहाबा की हकीकत उरियां होकर सामने आ जाएगी और इस तरह शियों का मौक़िफ़ समझने में आसानी होगी। सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 47 के किताब अल अदब बाब के सिलसिले में है। आमश कहते हैं, मैंने शकीक़ को कहते हुए सुना कि अब्दुल्ला कह रहे थे, रसूल खुदा ने एक कसम ऐसी खाई जैसे बाज़ लोग खाया करते हैं। तो एक अंसारी ने कहा, वल्लाह ये कसम खुदा के लिए नहीं है। मैंने कहा, मैं इस बात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र करूँगा। चुनाचा मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त पहुँचा जब आप अपने असहाब के जमघटे में थे। मैंने आपके कान में ये बात कही तो आपको बहुत नागवार हुआ, चेहरे का रंग बदल गया और आप गज़ब में भर गए। आपकी हालत देखकर मैंने अपने दिल में कहा, काश मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर ही ना दी होती। इसके बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा को इससे भी ज़्यादा अज़ियत दी गई थी, ये कहकर आपने सब्र फरमाया। इसी तरह बुखारी के किताब अल अदब बाबुल तस्बुमुल ज़हक में है। अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आपके ऊपर एक नजरानी चादर थी जिसके किनारे मोटे थे। इतने में एक बुद्धू अरब मिला और इसने बहुत ज़ोर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर घसीटा। मैंने देखा कि ज़ोर से खींचने की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के किनारों पर इसका निशान पड़ गया था। चादर खींच कर बुद्धू ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा का माल जो तुम्हारे पास है इसमें से मुझे भी देने का हुक्म दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुड़कर हंसने लगे और हुक्म दिया, इसको कुछ दे दिया जाए। इसी तरह किताबुल अदब में बुखारी ने बाब मिन लम युवाजुन नास बिल एताब में एक रिवायत हज़रत आयशा से नकल किए, फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कोई चीज़ बनाई और लोगों को इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने इसके इस्तेमाल से एराज़ किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको इसकी इत्तिला हो गई तो आपने एक खुतबा दिया जिसमें हमदो सनाए इलाही के बाद फरमाया, आखिर लोगों को क्या हो गया है जिसको मैंने बनाया है इससे परहेज़ करते हैं। वल्लाह मैं खुदा के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ और सबसे ज़्यादा डरता हूँ। जो शख्स भी इस रवायत को गौर से पढ़ेगा वो खुद समझ लेगा कि असहाब अपने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गलती कर सकते हैं मगर ये लोग ख़ता नहीं कर सकते, बल्कि इसी चीज़ ने बाज़ मौरखीन को इस बात पर आमादा किया कि वो सहाबा के हर फ़ेल को सही समझते हैं चाहे वो अफ़ाल फ़ेल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ ही हों। और बाज़ सहाबा के बारे में खुल्लम खुल्ला ये इजहार करते हैं कि इनका इल्म व तक़वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ज़्यादा था। जैसा कि तकरीबन मौरखीन का अजमा है कि बदर के कैदियों के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती की थी और उमर की राय बिल्कुल सही थी और इस सिलसिले में झूठी झूठी रवायतें नकल करते हैं। मसलन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खुदा हमको किसी मुसीबत में मुब्तिला कर दे तो इससे उमर बिन ख़त्ताब के अलावा कोई निजात हासिल नहीं कर सकता। और ये लोग ज़बान हाल से कहते हैं, अगर उमर ना होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो जाते। अलीज़ाउबिल्ला, खुदा इस फासिद अकीदे से बचाए जिससे बदतर कोई अकीदा नहीं हो सकता। मैं कसम खा कर कहता हूँ, जिसका भी ये अकीदा हो वो इस्लाम से इतना ही दूर है जितना मशरिक मगरिब से। इस पर वाजिब है कि अपना इलाज कराइए, अपने दिल से शैतान को भगाए। क़ुरान का ऐलान है, तर्जुमा, भला तुमने इस शख्स को कभी देखा है जिसने अपने नफसानी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और इसकी हालत समझ बूझ कर खुदा ने इसे गुमराही में छोड़ दिया और इसके कान और दिल पर अलामत मुकर्रर कर दी है कि ये ईमान ना लाएगा और इसकी आँख पर पर्दा डाल दिया है। फिर खुदा के बाद इसकी हिदायत कौन कर सकता है, तो क्या तुम लोग इतना भी गौर नहीं करते। सूरह जासिया आयत 23। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, जिन लोगों का ये अकीदा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशात की पैरवी करते थे और मिलाने नफ्स की बिना पर हक से अदूल कर जाते थे और खुदा के लिए कसम नहीं खाते थे बल्कि अपनी ख्वाहिशों जज्बात में बह जाते थे, और जो लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई चीज़ों से इसलिए परहेज़ करते थे कि वो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आलिम हैं, ये तमाम लोग मुसलमानों के नज़दीक किसी भी एहतराम के लायक नहीं, चे जाएगा ऐसे लोगों को मलाइका की जगह समझा जाए और इसके बारे में ये अकीदा रखा जाए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल यही लोग हैं और मुसलमानों को इनकी पैरवी और सीरत पर इसलिए चलने की दावत दी जाए कि ये असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ यही सबसे बड़ा तजाद है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद भेजते हैं तो इनके साथ सारे सहाबा को भी शामिल कर देते हैं। कहाँ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ सहाबा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब खुदावंदे आलम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व मंजिलत को जानता है और लोगों की गर्दनों को झुकाने के लिए इनकी कदर व मंजिलत का इजहार करने के लिए सभी को हुक्म देता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके अहले बैत अलैहिस्सलाम ताहिरीन पर भी दुरूद भेजा करें, तो भला हमको कहाँ से हक पहुँचता है कि असहाब को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा दें या असहाब को इनके अहले बैत तो ताहिरीन अलैहिस्सलाम के बराबर करार दें। अहले बैत अलैहिस्सलाम तो वो हैं जिनको खुदा ने आलिमीन पर फजीलत दी है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये नतीजा अखज़ कर लूँ कि उमवी और अब्बासी लोग चूँकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजल व मंजिलत को जानते थे, इसलिए उन्होंने अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क बदर किया, देश निकाला दिया, इनको इनके पैरोकारों को इनके चाहने वालों को कत्ल कर दिया। खुद खुदा किसी मुसलमान की नमाज इस वक्त कबूल नहीं करता जब तक वो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद ना भेज ले, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने वाले इनसे मुनहरिफ होने वाले क्या जवाब पेश करेंगे। चूँकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत छुपाई नहीं जा सकती थी, इसलिए लोगों को धोखा देने के लिए इन लोगों यानी उमवियों और अब्बासियों ने सहाबा को भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुलहिक कर दिया और कहने लगे सहाबा और अहले बैत अलैहिस्सलाम फजीलत में बराबर है, क्योंकि इन्हें उमवियों और अब्बासियों के बाज़ बुज़ुर्गों ही ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता और ताबईन में से कुछ नाकिसुल अकुल अफराद यानी बेवकूफ़ों को ख़रीद लिया था ताकि वो लोग फ़ज़ाइल सहाबा में झूठी और मनगढ़ंत रवायात नकल किया करें, खुसूसन इन असहाब के लिए जो सरीर आराए खिलाफत हुए हैं, और यही लोग बराह रास्त उमवियों और अब्बासियों को तख़्ते खिलाफत तक पहुँचाने वाले और मुसलमानों की गर्दनों पर हुकूमत करने का सबब बने हैं। मेरी बातों की गवाह खुद तारीख है, क्योंकि यही हज़रत उमर जो अपने गवर्नरों का मुहाजबा करने में बहुत मशहूर थे और मामूली सी से शुबे की बिना पर माजूल कर दिया करते थे, माविया के साथ इतनी नरमी बरतते थे कि जिसका हिसाब नहीं, माविया से कभी मुहाजबा नहीं करते थे। माविया को अबू बकर ने अपनी हुकूमत में गवर्नर मुअय्यन किया था, हज़रत उमर ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में माविया को इसकी जगह पर बरकरार रखा और कभी माविया पर एतराज़ तक नहीं किया, इंतहा ये है कि इजहार नाराज़गी या मलामत तक नहीं की, हालांकि बकसरत लोगों ने माविया की शिकायत की मगर उमर इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देते थे। लोग आ आकर कहते थे माविया सोने और रेशम का लिबास पहनता है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मर्दों पर हराम करार दिया है, तो उमर सिर्फ ये कहकर टाल देते थे, छोड़ो वो अरब का कसरा है। माविया 20 साल तक बल्कि इससे भी ज़्यादा हुकूमत करता रहा। किसी की मजाल नहीं थी जो इस पर एतराज़ करता या इसको माजूल करता। और जब उस्मान खलीफा हुए तब तो पूछना ही क्या है। सैया भुने कोतवाल वाली मिसाल सादिक आती है। मुतरजम, तो उन्होंने चंद दीगर विलायत को माविया के जरिए ज़ेर हुकूमत कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुआविया भरपूर इस्लामी सरवत का मालिक बन बैठा। लश्कर की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा कर लिया। अरब के जितने उबाद बदमाश थे सबको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया, ताकि वक्त ज़रूरत इमाम उम्मत के खिलाफ इनकलाब बरपा किया जा सके। और कसबो ज़ोर जबरो तशद्दुद ताकत व कुव्वत के बलबूते पर हुकूमत पर कब्ज़ा किया जा सके और मुसलमानों की गर्दनों पर बिला शिरकत गैर हुकूमत की जा सके। और मरने से पहले अपने फासिक शराब ख्वार जनाकार अय्याश बेटे यजीद लानतुल्ला के लिए ज़बरदस्ती लोगों से बैत ले सके। बैत यजीद का भी एक तफसीली क़िस्सा है जिसको इस किताब में बयान करना मकसूद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप इन सहाबा के नफ्सियात को समझ लें जो तख्त खिलाफत पर नाहक काबिज़ हुए थे और जिन्होंने बनी उमैया की हुकूमत का रास्ता हमवार किया था। एक मफरूज़े की बिना पर कुरैश को ये बात पसंद नहीं है कि नबुवत व खिलाफत दोनों बनी हाशिम ही में रहे। ब्रैकेट में है, खिलाफत व मलूकियत मौदूदी योमुल इस्लाम अहमद अमीन, ब्रैकेट क्लोज। हुकूमत बनी उमैया का हक क्या, बल्कि इस पर वाजिब था कि जिन लोगों ने इसकी हुकूमत के लिए रास्ता हमवार किया था इनका शुक्रिया अदा करें। और कम से कम शुक्रिया ये था कि कुछ रावियों को ख़रीद लिया जाए जो इनके आका व मौला के फ़ज़ाइल में जाली हदीसें बयान करें, जिनकी शोहरत करिया करिया देहात देहात हो जाए और इसी के साथ इनके आकाओं को इनके दुश्मनों पर फजीलत भी हासिल हो जाए, यानी अहले बैत अली सलाम पर फजीलत हासिल हो जाए। ऐसी ऐसी फजीलत की रवायतें जाल की गई हैं कि पनाह बखुदा। हालांकि खुदा शाहिद है, अगर इन रवायात को अक्ली व मंतकी व शरई दलीलों की रोशनी में देखा जाए हबाओ अमसूरा नज़र आएंगी और कोई आदमी इनके ज़िक्र की हिम्मत भी ना करेगा। अलबत्ता जिसके दिमाग में भूसा भरा हो या वो तनाकुजात पर ईमान रखता हो तो बात ही और है। मैं बतौर मिसाल, ब्रैकेट में लिखा है, ना बखातिर हसर, ब्रैकेट क्लोज, चंद चीज़ों का जिक्र करता हूँ। बचपने से अदालत उमर की शोहरत सुनते आए हैं और ये बात इतनी मशहूर है कि लोग कहते हैं, ए उमर तुम अदल करते करते सो गए। बाज़ों ने कह दिया कि हज़रत उमर को कब्र के अंदर सीधा क़याम की सूरत में दफन किया गया ताकि कहीं इनके मरने से अदल न मर जाए। ज़बान ज़दे ख़ासो आम है कि अदालत उमर के बारे में जो चाहे बयान करें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही तारीख़ का कहना है कि सन 20 हिजरी में हज़रत उमर ने जब लोगों में अताया की रस्म जारी की तो ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और ना इसकी परवाह की, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों में अता के सिलसिले में मसावात कायम की थी, किसी को किसी पर फजीलत नहीं दी थी। खुद अबू बकर अपने दौर खिलाफत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहे, लेकिन हज़रत उमर ने एक नया तरीक़ा ईजाद किया। उन्होंने साबिकीन को दूसरों पर फौकियत दी और कुरैश के मुहाजरीन को दूसरे मुहाजरीन पर फजीलत दी और तमाम मुहाजरीन को, ब्रैकेट में लिखा है, ख्वा कुरैशी हो या गैर कुरैशी, ब्रैकेट क्लोज, तमाम अनसार पर मुकद्दम किया। अरब को तमाम गैर अरबों पर तरजीह दी, आका को ग़ुलाम पर, ब्रैकेट में लिखा है, शरा इब्न अबिल हदीद जिल्द 8 सफ़ा 111, ब्रैकेट क्लोज, कबीला मुज़िर को कबीला रबिया पर इस तरह फोकियत दी कि मुज़िर को 300 और रबिया के लिए 200 मुय्यन किया, ब्रैकेट है, तारीख़ याकूबी जिल्द 2 सफ़ा 106, ब्रैकेट क्लोज, कबीला औस को कबीला खजरज पर मुकद्दम किया, ब्रैकेट में फतूल بلدان صفا 437 بریکٹ کلوز. اے عقل والوں مجھے بتاؤ یہ تفصیل کون سی عدالت ہے. اسی طرح حضرت عمر کے علم کا بڑا شہرہ سنا کرتے تھے, یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عالم عمر ہیں, اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن الخطاب میں اختلاف رائے ہوتا تھا تو قرآنی آیات حضرت عمر کی تائید کرتی ہوئی اترتی تھیں. لیکن صحیح تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عمر نزول قرآن سے پہلے تو درکنار نزول قرآن کے بعد بھی قرآن کی موافقت نہیں کرتے تھے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ عمر کے زمانہ خلافت میں کسی صحابی نے عمر سے پوچھا, اے امیر المومنین, میں رات کو مجنب ہو گیا اور مجھے پانی نہ مل سکا تو میں کیا کروں؟ عمر نے فوراً کہا, نماز چھوڑ دو, مت پڑھو. لیکن ہمارے یاسیر جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا, ایسے موقع پر تیمم کر لیتے ہیں. لیکن حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے اور عمار سے کہا, تم کو ہم اسی کام کی رائے دیتے ہیں جو تم نے اپنے لیے کیا ہے, بھلا مجھے بتاؤ قرآن میں موجود آیت تیمم کا علم حضرت عمر کو کہاں تھا؟ عمر کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کیا ہوا؟ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وضو کرنا سکھایا تھا, تیمم کرنا بھی تو بتایا تھا. اور مدعی سست گواہ چست کے بمصادق کے بمصداق. خود حضرت عمر متعدد واقعات کے بارے میں کہتے ہیں, میں عالم نہیں ہوں, بلکہ یہاں تک فرمایا ہر آدمی عمر سے زیادہ علم میں فقہ جانتا ہے, یہاں تک کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں بھی زیادہ جانتی ہیں. خود عمر نے متعدد مرتبہ کہا, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بیچارے مرتے مرتے مر گئے, لیکن کلالہ کا حکم نہیں جانتے تھے, اسی لیے زندگی میں کلالہ کے متعدد و مختلف احکام بیان کر گئے, جیسا کہ تاریخ شاہد ہے. مگر ہمارے علماء کرام اسی پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر کو علم الصحابہ ثابت کریں. اے صاحبان بصیرت, حضرت عمر کا علم کیا ہوا؟ اسی طرح حضرت عمر کی طاقت و قوت و شجاعت کے بارے میں بہت کچھ سنا کرتے تھے, یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی کہ عمر کے اسلام لانے سے قریش خوفزدہ ہو گئے, مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ گئی. یہ بھی کہا گیا خدا نے اسلام کی عزت عمر بن خطاب سے بڑھائی ہے. بعضوں نے تو مبالغہ آرائی کی حد کر دی کہ جب تک عمر اسلام نہیں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے تھے. لیکن تاریخ ان باتوں کی تردید کرتی ہے. تاریخ میں عمر کی کوئی شجاعت و بہادری نہیں ملتی. تاریخ یہ نہیں جانتی کہ عمر نے کسی مشہور کو کیا کسی معمولی آدمی کو بھی مقابلے میں قتل کیا ہو, یا بدر, احد, خندق جیسی جنگوں میں کسی بہادر سے نبرد آزمائی کی ہو, بلکہ تاریخ اس کے برخلاف بیان کرتی ہے کہ معرکہ احد کے بھگوڑوں میں عمر بھی تھے. اسی طرح حنین میں بھاگنے والوں کی فہرست میں ان کا بھی نام نامی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا اور آپ شکست کھا کر واپس آ گئے. جتنی جنگوں میں آپ شریک ہوئے سب میں محکوم رہے, کبھی سرداری نصیب نہیں ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری لشکر جو اسامہ بن زید کی سرکردگی میں بھیجا گیا, اس میں بھی آپ محکوم ہی تھے, حالانکہ اسامہ محض 18 سال کے جوان تھے. صاحبان عقل, خدا کے لیے آپ ہی فیصلہ کیجئے ان حقائق کے ہوتے ہوئے کیسی شجاعت, کیسی بہادری. اسی طرح عمر بن خطاب کے تقوی و پرہیزگاری, خوف خدا میں گریہ وزاری کے بارے میں بہت کچھ سنا کرتے تھے. بات یہاں تک مشہور ہے کہ عمر بن خطاب اپنے نفس کا محاسبہ اتنا کرتے تھے کہ وہ اس بات سے لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر عراق میں کوئی خچر راستے کی ناہمواری کی بنا پر ٹھوکر کھا جائے تو اس کی جواب دہی مجھے کرنی ہوگی کہ راستہ کیوں نہ ہموار تھا, حالانکہ موصوف مدینے میں قیام فرماتے تھے. لیکن تاریخ کا بیان ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ تھا, بلکہ اس کے برعکس آپ فزان غلیظان واقع ہوئے تھے. نہ رتی برابر خوف خدا تھا, نہ ذرہ برابر درا. तुंद मिजाजी का ये आलम था कि अगर किसी ने कुरान मजीद की किसी आयत के बारे में सवाल कर लिया तो मारे दुर्रों के इसको खूनम खून कर देते थे। आपकी तुंद मिजाजी से लोग इतना खायफ रहते थे कि महज आपको देखकर औरतों का हमल साकित हो जाता था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो आप नंगी तलवार लेकर मदीने की गलियों में घूम रहे थे और लोगों को धमकी दे रहे थे कि जिसने कहा कि मोहम्मद मर गए इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और कस्में खा खा कर लोगों को यकीन दिला रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे नहीं हैं, वो तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अपने खुदा से मुनाजात करने गए। आखिर यहाँ आपको खौफ खुदा क्यों नहीं आया? इसी तरह जब हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम का घर जलाने गए तो कहा जो लोग घर में हैं अगर वो निकलकर बैत अबू बकर नहीं करते तो इस घर में आग लगा दूंगा। ब्रैकेट में है अलीमामियाओं वल सियासा। लोगों ने कहा अरे इसमें बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम हैं। कहा हुआ करें, इस मौके पर आपको खौफ खुदा क्यों नहीं आया? किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह नहीं करते थे। आपकी जसारत का आलम यह था कि अपने दौरे खिलाफत में मुतअद्दिद ऐसे अहकाम जारी फरमाए जो कुरान के नसूस सरीहा और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्लम खुल्ला मुखालिफ थे। ब्रैकेट में है अल नसुल इज्तिहाद, मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें माए हवाला के तफसील मौजूद है और हवाले भी ऐसे हैं जो तमाम इस्लामी फ़िरक़ों में मकबूल हैं। ब्रैकेट क्लोज। इसे खुदा के नेक बंदे, ए खुदा के नेक बंदों, इन तल्ख वाक़यात के बावजूद वो वराओ तकवा कहाँ है जिसका इतना ज़्यादा ढंडोरा पीटा जाता है? मैंने सिर्फ़ उमर की मिसाल इसलिए दी कि ये बहुत बड़े मशहूर सहाबी हैं और बहुत ही इख्तिसार के साथ लिखा है क्योंकि तूल देना मकसूद नहीं है। अगर मैं तफसील से लिखने लगूँ तो कई किताबें लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद हसर करना नहीं है बल्कि बतौर मिसाल बयान करना है। और यही मुख्तसर सी तहरीर सहाबा की नफ्सियात समझने के लिए काफ़ी है, और इससे उलमाए अहले सुन्नत का तनाखुज़ भी सामने आ जाता है। क्योंकि एक तरफ तो लोगों को असहाब के बारे में नक़द व तबसरा करने बल्कि शक करने से रोकते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी रवायात तहरीर करते हैं जिससे शक का पैदा होना फितरी बात है। काश उलमाए अहले सुन्नत ने इस किस्म की रवायात ही को ज़िक्र न किया होता जिससे अजमत सहाबा मजरूह होती है, इनकी अदालत मखदूश हो जाती है। अगर ऐसी रवायात ना लिखी गई होती तो हम कभी शक में मुब्तिला ना होते। मुझे अब तक नजफ़ अशरफ के आलिम जनाब असद हैदर साहब मुअल्लिफ किताब अल इमामुस सादिकु वल मज़ाहिबुल अरबा की मुलाकात याद है कि हम लोग बैठे हुए शिया और सुन्नी के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझसे अपने वालिद का किस्सा बयान किया कि मेरे वालिद की मुलाकात हज में एक ट्यूनिसी आलिम से हुई जो अलज़ैतूनिया यूनिवर्सिटी के उल्मा में से थे, और ये वाक़या तकरीबन 50 साल पहले का है। असद हैदर साहब अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं मेरे वालिद और ट्यूनिसी आलिम में हज़रत अली अलैहि सलाम की इमामत के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, और मेरे वालिद हज़रत अली अलैहि सलाम के इस्तेहकाक पर दलीलें पेश कर रहे थे। चुनाचे उन्होंने 4 या 5 दलीलें पेश की और ट्यूनिसी आलिम बड़े गौर से सुन रहा था। जब मेरे वालिद की बात ख़त्म हो गई तो ट्यूनिसी आलिम ने पूछा कुछ और भी दलीलें हैं या बस इतनी ही? वालिद ने कहा बस यही दलीलें हैं। ट्यूनिसी आलिम ने कहा अच्छा अपनी तस्वीर निकालो और शुमार करना शुरू कर दो। फिर इसने हजरत अली अलैहिस्सलाम की इमामत पर 100 ऐसी दलीलें पेश की जिनको मेरे वालिद नहीं जानते थे। शेख असद हैदर ने बयान जारी रखते हुए कहा अगर अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ अपनी किताबों में लिखी हुई दलीलों को पढ़ लेते तो हमारे हम अकीदा हो जाते और आपसी इख्तिलाफ बहुत पहले ख़त्म हो जाता। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ अगर इंसान अंधी तकलीद छोड़ दे और तासुब को बालाए ताक रख कर सिर्फ़ दलील का ताबे हो जाए तो असद हैदर वाली ही बात हक़ है, इससे मुफर का कोई रास्ता नहीं है।